मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 7 मई 2019 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आप सबको एक सुसाइड नोट पढ़कर सुनाया था और मैंने आप सबसे ये अर्ज भी किया था कि प्लीज आप सब इसे गंभीरता से और पूरी संवेदनशीलता के साथ सुने और सुनने के बाद उस पर बहुत ही तार्किक तरीके से विचार भी करें और विचार करने के बाद उसमें से कुछ तथ्य निकालने की कोशिश करें, ऐसे तथ्य निकालने की जो हमारे जीवन के आगे के रास्ते के लिए प्रकाश का काम कर सके। आप लोगों में से बहुत से मेरे प्रिय श्रोताओं ने ऐसा किया होगा और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप लोगों ने जो किया होगा वह काफी कुछ सत्य के करीब होगा। देखिए, जब मैं कह रहा हूं सत्य के करीब होगा तो यह सत्य क्या होता है? देखिए, सत्य वह नहीं होता जिसे हम सच मानते हैं, सत्य वह भी नहीं होता जिसे हम सच समझते हैं, सत्य वह भी नहीं होता जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि लेटर जो हमारे सामने है वह हमें दिखाई दे रहा है, तो सत्य वह भी नहीं है। सत्य हमारी अवधारणाएं भी नहीं होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं उन्हें भी हम सत्य नहीं मान सकते। सत्य तो बहुत ही गहरी चीज है, लेकिन फिर भी यदि हम तर्क का इस्तेमाल करते हैं तो हम सत्य के ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, और जब हम सत्य के करीब पहुंच जाते हैं तो यकीन मानिए कि जिंदगी हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाती है और सच पूछिए तो काफी कुछ प्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। प्रेडिक्टेबल कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन के बारे में खुद भविष्यवाणियां कर सकते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, हमने ऐसा ऐसा किया है तो अब ऐसा ऐसा होना है और यह कम बड़ी बात नहीं होगी। मित्रों, आप सबने अपने अपने तरीके से निष्कर्ष निकाले होंगे और दो निष्कर्षों की तो मैं बात कर सकता हूं जो आप सबके पास होंगे। पहला निष्कर्ष तो यह कि जब दोनों में प्रेम था और प्रेम के बाद भी अगर प्रेमी ने गिफ्ट की बात कही तो उसे सतर्क होना चाहिए था कि यह प्रेम है या लेन देन है, सौदेबाजी है, क्योंकि प्रेम में फिर दहेज की बात नहीं रह जाती। चलिए, पहली बार उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब दोबारा फिर मांग की जा रही है तब तो कम से कम सतर्क हो ही जाना चाहिए, क्योंकि समझ लेना चाहिए कि इस मांग का अंत होने वाला नहीं है, यानी कि वह प्रेम नहीं था, प्रेम का ढोंग था, प्रेम का दिखावा था। और देखिए, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हमारे समाज में होने लगी हैं। फेसबुक के आधार पर एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, लेकिन वो कोई प्रेम उस तरह का नहीं होता। सच पूछे तो प्रेम तो एक महसूस करने की चीज है, जो आप जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे के गुणों से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, व्यवहार से प्रभावित होते हैं, तब प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। हालांकि ठीक है, हमारे साहित्य में इस तरह के प्रेम की भी चर्चाएं हैं कि सुनकर प्रेम हो गया किसी के बारे में, किसी के बारे में पढ़कर प्रेम हो गया, लेकिन देखिए वो साहित्य और कला की बात है, वो जीवन की बात नहीं है। तो पहली तो बात है कि प्रेम का जो आधार था वही थोड़ा कमजोर था, और इसके बाद जब गिफ्ट की मांग की जा रही है और फिर से दोबारा धन की मांग की जा रही है तब तो फिर संदेह के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बच जाती, लेकिन जो भावनात्मक आवेश है, जो भावनात्मक जकड़ और पकड़ है, वह हमें सही निर्णय लेने से लगातार रोकती रहती है, और इस मामले में भी ऐसा हुआ, अदरवाइज तो संदेह करने के लिए बहुत स्पष्ट कारण थे। दूसरा कारण, दूसरा जो तथ्य निकलता है कि फिर आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? देखिए, वो पढ़ी लिखी थी, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और एक ऐसे प्रोफेशनल सब्जेक्ट से किया था कि उनके लिए स्वावलंबी बन पाना, आर्थिक स्वावलंबी बन जाना कोई भी मुश्किल काम नहीं था, बल्कि करना उनको यह चाहिए था कि अपने अधिकारों के लिए वो लड़ती और एक तरह से महिलाओं के अधिकारों की लड़ने वाली एक वो सिपाही बन जाती। वो ऐसा कर सकती थी क्योंकि जीवन का अंत करना तो कोई न तो समस्या का अंत है और न ही सच पूछे तो वर्तमान का कुछ हल है। इसके बाद तो आप किसी काम के नहीं रह जाते, खत्म, तार आपका टूट गया, पतंग कट गई, खत्म हो गई सारी चीजें। ये अगली बड़ी गलती रही। मित्रों, ये एक पक्ष है कि हम जब सही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें दूसरी चीजों पर भी देखना हो, ध्यान देना होता है, चीजों को बड़े संतुलन तरीके से देखने की आदत डालनी चाहिए। यह पूरा का पूरा वह एक पक्ष है जो पत्रों के जरिए हमें मालूम है। पहली बात तो यह है कि पत्रों में जो बात लिखी गई है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, हम नहीं जानते, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि सच होगा, सच के करीब होगा। क्योंकि तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। अगर हम इसको तर्क मान लेते हैं, यानी कि फिर से हम इमोशनल तरीके से सोचते हैं, तो यह सारी घटना हमें सच मालूम पड़ती है। लेकिन चलिए हम मान करके चलते हैं कि इसमें जिन बातों का भी उल्लेख किया गया वो सब सच था। लेकिन हमारे पास अभी दूसरा पक्ष नहीं है, दूसरे पक्ष का कहीं रत्ती भर भी उल्लेख नहीं है। दूसरा पक्ष हमारे लिए किस तरह से काम आ सकता है? जैसे मान लीजिए कि अगर वो कहते हैं कि हमारे परिवार वाले इस रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो सवाल यह है कि वो ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि जो उनकी मांग है वो पूरी हो रही है, तो उन्हें ऐसी क्या बात पता लग गई कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है? उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो जब चूंकि जानकारी नहीं है, इसलिए हम दूसरे पक्ष को 100% कसूरवार ठहरा सकते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं जाना चाहिए। जब तक उनका पक्ष हमें नहीं मिल जाता, तब तक मुझे लगता है कि कौन कितना दोषी था इस बारे में निर्णय लेना एक आधा अधूरा निर्णय होगा। उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। और मुश्किल यह है मित्रों कि जब वो अपना पक्ष रखेंगे तो हमारे लिए यह समझना मुश्किल होगा कि वो कितना सही बोल रहे हैं। ठीक वैसे जैसे इस पत्र में भी हम सोच सकते हैं कि कितना सही लिखा गया है। तो फिर क्या करें हम? हमारे लिए क्या संदेश है? हमारे लिए संदेश कुल मिलाकर के ये है मित्रों कि हम जज की तरह काम न करें। देखिए, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमें खुद को एक न्यायाधीश के पद पर नहीं बैठा देना चाहिए कि हम जजमेंट पारित कर रहे हैं कि नहीं, इसने गलत किया, इसने सही किया, इसको ऐसा करना चाहिए था। सामान्यतया हम यही करते हैं। हमारे लिए संदेश केवल ये है कि हम कैसे इन चीजों को अपने जीवन में उतार कर अपने आप में एक सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि अपने जीवन को ज्यादा रियलिस्टिक बना सकते हैं। यह एक घटना है, यह एक घटना है, और इस घटना के आधार पर हम अपने दिमाग को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और वो इंस्ट्रक्शन ये कि जब भी इस तरह की इमोशनल सिचुएशन आए, तुरंत कोई भी निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, कोई भी जजमेंट नहीं पास करना चाहिए, और यहां तक कि कुछ कहना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, उसे थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए, समय के हवाले छोड़ देना चाहिए, खासकर जब इस तरह के इमोशनल मोमेंट आते हैं तब। बेहतर है कि हम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ें और इसके बाद ठंडे दिमाग से उस पर विचार करें। और ठंडे दिमाग से जब आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन आपको जीवन के करीब पहुंचा देगा, क्योंकि जीवन अपने आप में मूल्यवान की बात नहीं है, अमूल्य है। मूल्यवान का तो मतलब है कि उसकी ज्यादा कीमत, नो, ये अमूल्य है, इसकी कोई कीमत दे ही नहीं सकता। जीवन आपको जीवन के करीब पहुंचा देगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि जीवन जीना चाहता है, जीवन कभी भी मरना नहीं चाहता। तो दोस्तों, आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। फिर नए विषय पर हम लोग आगे बातें करेंगे। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।